सत्यवचन। नमस्कार, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओ, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से दूसरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्गमन। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए, अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुने ये मधुर गीत।
मसीह महिमा तेरी महिमा हो, मसीह महिमा हो, सुबह को हो, दोपहर को हो, संध्या को सारी रात्रि को, मसीह महिमा, मसीह महिमा हो तेरी महिमा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार मिले। मैं प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी अपने कार्यों को करते हुए प्रभु की निकटता में रहकर कुशल पूर्वक ही होंगे। मित्रों, आपको याद होगा कि पिछले अध्ययन में हमने इन विषयों पर विचार किया था, मूसा और इसराइल के संतानों का छुटकारे का गीत गाना, लोगों का पानी मांगना क्योंकि वहां पर पानी नहीं था, और उनका कुड़कुड़ाना, मारा में कड़वा पानी का होना और एलिम में कुआं का पाया जाना इत्यादि। आज हम अपने अध्ययन को निर्गमन की पुस्तक उसके 16 अध्याय से आरंभ करेंगे, लेकिन इसके पहले आइए हम सब प्रभु से प्रार्थना करें और उससे सहायता मांगे। हमारे जीव तो सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जिसे आपने हमें दिया है, ताकि हम फिर से एक बार आपके जीव वचन का अध्ययन कर सकें। पिता परमेश्वर, जब हम आपके जीवित वचन से सीखते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दें, ताकि जो वचन आज हमारे बीच में बताए जाते हैं हमारे हृदयों से बातचीत करने पाए, हमें समझाने पाए, हमें सिखाने पाए, ताकि हम आपके वचन के अनुसार अपना जीवन ढाल सकें। हम विनती करते हैं हमारे उन तमाम श्रोता भाई बहनों के लिए जो किसी रीति से दुखी और निराश हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं, या किसी प्रकार की ऐसी समस्याओं में हैं जो किसी को नहीं बता सकते। प्रभु आप उनकी सहायता करें, उन्हें शांति दे, आनंद दे, ताकि वे आप पर भरोसा करने पाए कि आप उद्धारकर्ता हैं, आप शांतिदाता हैं। प्रभु आज के समय को हम सबको आपके हाथ में देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज के इस अध्ययन में हम इन मुख्य विषयों पर विचार करेंगे जो इस प्रकार से हैं: इसराइल की संतानों का सीन के निर्जन प्रदेश में आना, रोटी के लिए कुड़कुड़ाना, मन्ना और बटेरों का भेजा जाना, मन्ना का सब्त के दिन उठाने के लिए मना किया जाना, और एक ओमेर मन्ना को सुरक्षित रखना आदि विषयों पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, हम लोग इसराइली राष्ट्र के अनुभव के विषय में अध्ययन कर रहे थे। मिस्र देश छोड़ने के बाद वे लाल समुद्र पार करके सीनै पर्वत पर पहुंचे। यहाँ पर हम ऐसे 7 उल्लेखों को पाते हैं जिनमें हमें मसीही अनुभवों की झलक मिलती है। अभी तक हमने देखा कि इसराइली मूसा का गीत गा रहे थे और बिना पानी के ही वे 3 दिन तक यात्रा कर चुके हैं और वे मारा में पहुंचे हैं जहाँ का पानी कड़वा है, और तब वे एलीम को गए जहाँ उन्हें पानी और पेड़ बहुतायत से मिले। एलीम एक फलवंत मसीही अनुभव को दर्शाता है और परमेश्वर हमसे उस स्थान में ले जाने का वायदा करते हैं। अब हम सीन की मरुभूमि में आते हैं जहां मन्ना और बटेर हैं, और हम पाते हैं कि मसीह जीवन की रोटी है, और आगे हम देखते हैं इसराइलियों का रोटी के लिए कुड़कुड़ाना। मित्रों, पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय और उसके 1-3 पद में लिखा है, फिर एलीम से कूच करके इसराइलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के महीने के दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नाम जंगल में, जो एलीम और सीनै पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। जंगल में इसराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकझक करने लगी, और इसराइली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही होता, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं कि इसराइलियों को मिस्र देश छोड़े सिर्फ 2.5 महीने ही हुए थे, और जब वे लाल समुद्र के किनारे पर पहुंचे तो वे कुड़कुड़ाने लगे, लेकिन समुद्र पार करते ही वे मूसा का गीत गाने लगे जो छुटकारे का गीत था। परंतु ज्यादा दिन नहीं बीते थे कि वे फिर से कुड़कुड़ाने लगे और फिर से रेगिस्तान की करुण गीत गाना आरंभ कर दिए। हम उन्हें एक पीड़ित करने वाला समूह कहते हैं। वे मिस्र की गुलामी से छुटकारा तो पाना चाहते थे, परंतु जब वे जंगल में पहुंचे तो पानी और भोजन की कमी के कारण वे फिर से शिकायत करने लगे। मित्रों, उन्होंने मिस्र के जीवन को याद किया और उन्हें पानी की लालसा की। हमें ऐसे कई लोग मिलेंगे जिन्होंने पाप से छुटकारा पा लिया है, परंतु वे फिर भी अपने पुराने जीवन में लौटना चाहते हैं। हम में से बहुत से लोगों की यही परिस्थिति है। मित्रों, एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि वह एक शराबी था और परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। जब उसका जीवन बदल गया तो वह उन स्थानों में, जिसे वह अच्छी तरह से जानता था कि वहां शराब बिकती है, तो वह उस रास्ते से नहीं जाता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि वह वहां से गया तो अंदर अवश्य जाएगा। इसलिए वह कहता है कि मैंने उन शारीरिक लालसाओं को पीछे मुड़कर देखा, परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं फिर से नहीं गया और आज मैं उनसे घृणा करता हूं। तब हम आगे देखते हैं परमेश्वर द्वारा मन्ना और बटेर का प्रबंध करना। मित्रों, परमेश्वर का उद्देश्य कभी भी अपने लोगों को भूखे मारने का नहीं था। उसकी योजना थी कि वह उन्हें निर्जन प्रदेश में से होकर ले जाए, और उसने उनकी देखभाल करने का भी वायदा किया। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं निर्गमन 16 उसके 4-7 पद में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तुएं बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं, और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन और दिनों से दुना होगा, इसलिए जो कुछ उस दिन बटोरे उसे तैयार करके रखें। तब मूसा और हारून ने सारे इसराइलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो? मित्रों, मूसा और हारून ने मंडली के लोगों से पूछा, तुम लोग हमारे विरोध में क्यों कुड़कुड़ाते हो? हम तो केवल मनुष्य मात्र हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ प्रबंध नहीं कर सकते। परमेश्वर ने तुम्हारे कुड़कुड़ाने को सुना है और अब तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। मित्रों, हर समय जब भी इसराइली कुड़कुड़ाए, परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। ये बातें हमें बताती है कि परमेश्वर अधिकार रखने वाले, शिकायत करने वाले, दूसरे की गलती निकालने वाले मसीहों को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आज कलीसिया शिकायत करने वाले मसीहों से भरी पड़ी है। मित्रों, यदि आप ऐसी कलीसिया में हैं जहां पर कुड़कुड़ाना, शिकायत करना और अधिकार रखना पड़ता है, तो आपको वहां से निकलकर कहीं और चले जाना चाहिए। हम निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय उसके 8 पद में पढ़ते हैं, फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या हैं? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं, यहोवा ही पर होता है। मित्रों, जब आप कलीसिया की चीजों में अधिकार रखना आरंभ करते हैं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। क्या आप प्रचारक के ऊपर नियंत्रण रख रहे हैं क्योंकि उनका व्यवहार दोस्ताना नहीं है जैसा कि आप चाहते हैं, या फिर इसलिए कि वह पिछले रविवार को आपसे हाथ नहीं मिलाया, या फिर वह आपसे मिलने नहीं आया? क्या आप उसके विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे हैं? क्या आप उसके विरुद्ध इसलिए तो नहीं है क्योंकि वह परमेश्वर का वचन सिखाते हैं और परमेश्वर का प्रतिनिधित्व आपकी कलीसिया में करते हैं? कभी कभी हम उपदेशक लोग भी कुड़कुड़ाते हैं, परंतु हम सबों को सावधानी बरतनी चाहिए कि कहीं हम परमेश्वर के विरुद्ध तो नहीं कुड़कुड़ा रहे। मित्रों, परमेश्वर इन बातों को पसंद नहीं करते हैं। हम निर्गमन 16 उसके 9 से 13 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, फिर मूसा ने हारून से कहा, इसराइलियों की सारी मंडली को आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वरन उसके समीप आवे, क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना है। और ऐसा हुआ कि जब हारून इसराइलियों की सारी मंडली से ऐसी बातें कह रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखलाई दिया, तब यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उनसे कह दे कि गोधली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गई और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। मित्रों, परमेश्वर ने इसराइलियों को न केवल मन्ना दिया, परंतु बटेर भी भेजे, और उन्होंने भुना बटेर मन्ना के साथ खाया, जो एक उत्तम भोजन था। तब हम आगे देखते हैं मन्ना का वर्णन और इकट्ठा करना। मित्रों, इसराइली जब जंगल में से होकर के यात्रा कर रहे थे तो मन्ना उनका मुख्य भोजन था। हम निर्गमन 16 उसके 14 से 16 पद में पढ़ते हैं, और ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके छोटाई में पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इसराइली, जो न जानते थे कि वह क्या वस्तु है, सो आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है कि तुम उसमें से अपने अपने खाने के योग्य बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक ओमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितने हो वह उन्हीं लोगों के लिए बटोरा करे। मित्रों, इसराइलियों को सिर्फ एक दिन के लिए ही मन्ना एकत्रित करना पड़ता था। तब हम आगे देखते हैं निर्गमन 16 उसके 17 और 18 पद में, और इसराइलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया, और जब उन्होंने उसको ओमेर में नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके पास कुछ भी अधिक न रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी न हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने के योग्य ही बटोर लिया था। किसी को अपने अपने हिस्से से ज्यादा नहीं मिलता था, अर्थात उसमें कुछ भी ज्यादा और कुछ भी कम नहीं था। निर्गमन 16 उसके 19 से 21 पद में हम आगे पढ़ते हैं, फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ बिहान तक न रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, इसलिए जब किसी किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ बिहान तक रख छोड़ा, तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ और वे भोर को प्रतिदिन अपने अपने खाने के योग्य बटोर लेते थे और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। मित्रों, उन्हें मन्ना हर सुबह इकट्ठा करना पड़ता था और प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता था। यह एक व्यक्तिगत अनुभव था। मित्रों, मन्ना प्रभु यीशु मसीह को जीवन की रोटी के रूप में दर्शाता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 32 से 35 पद में पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। मित्रों, तब हम निर्गमन 16 उसके 22 से 24 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और ऐसा हुआ कि छठवें दिन उन्होंने दुना अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे दो दो ओमेर बटोर लिया और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। उसने उनसे कहा, यह तो वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा, इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ और जो सिझाना हो उसे सिझाओ और इसमें से जितना बचे उसे बिहान के लिए रख छोड़ो। जब उन्होंने उसको मूसा के इस आज्ञा के अनुसार बिहान तक रख छोड़ा तब ना तो वह बसाया और न ही उसमें कीड़े पड़े। परमेश्वर उसे प्रतिदिन मन्ना देगा, परंतु सब के पहले वे दो दिनों तक के लिए भोजन इकट्ठा करेंगे। मित्रों, मन्ना मसीह को जीवन रोटी के रूप में दर्शाता है, वह जो अपना जीवन इस संसार को देने के लिए स्वर्ग से उतर आया है। मित्रों, यीशु ही एक सच्चा रोटी है, वही है जो हमें जीवन और आहार देता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 8 अध्याय उसके 4 पद में हम पाते हैं कि 40 वर्षों की यात्रा में जब इसराइली निर्जन क्षेत्रों में भटक रहे थे तो उनके पैरों में कभी भी सूजन नहीं आई। मुझे एक डॉक्टर मित्र ने बताया कि पैर सूजने का एक कारण अनियमित भोजन भी है। मित्रों, यह दिलचस्प बात है कि मन्ना में ऐसी सारी गुण थी जो इसराइलियों के पैरों को सूजने से बचाती थी। मन्ना उनकी सारी जरूरतों को पूरा करती थी अर्थात पौष्टिक भोजन देती थी। तब हम आगे देखते हैं इसराइलियों को सप्त का दिन का दिया जाना। निर्गमन की पुस्तक उसके 16 अध्याय और 25 और 26 पद में हम पढ़ते हैं, तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको वह मैदान में न मिलेगा। 6 दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, परंतु 7वां दिन तो विश्राम का दिन होगा, उसमें वह न मिलेगा। इसराइलियों को सप्त का दिन साधारण व्यवस्था के नियमों को देने से पहले ही दिया गया था। हम निर्गमन 16 उसके 31 पद में पढ़ते हैं, और इसराइल के घराने वालों ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा और वह धनिया के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु से बने हुए पुए का सा था। मित्रों, आप मन्ना का वर्णन कैसे करेंगे? इसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। वह एक अद्भुत था जो इसराइल की सारी पौष्टिक जरूरतों को पूरा करता था। मैं सोचता हूं कि इसका स्वाद जैसा कि वे चाहते थे वैसा ही था। यह एक बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था, परंतु मिश्रित भीड़ इसका शिकायत कर रही थी। हम गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसके 4 और 5 पद में एक घटना को पाते हैं जो हमें मन्ना को समझने में मदद करती है। लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इसराइली भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा, हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंतमेन में खाया करते थे और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। मित्रों, मिस्र से दूर जंगल में भीड़ ने इन सभी वस्तुओं की कमी महसूस की। भोजन की सूची जिसकी वे कमी महसूस कर रहे थे वे सब वस्तुएं जमीन के नीचे या ऊपर पाई जाती है और इनमें कोई खास गुण नहीं होता है, जैसे कि खीरा, प्याज, लहसुन, तरबूज इत्यादि। मित्रों, जब आप इनका सेवन करते हैं तो आप अधिक प्रभावित नहीं होते हैं। किसी ने कहा है कि एक दिन एक सेव डॉक्टर को दूर रखता है, पर एक प्याज सभी को दूर रखता है। यही वो चीज है जिसे संसार के लोग खाते हैं, उन्हें इससे कोई संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि वे सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए ही होते हैं। मित्रों, मिली जुली भीड़ मिस्र से मिलने वाले भोजन को याद करके उसे खाने की इच्छा रखती थी। हम गिनती 11 अध्याय उसके 6 पद में आगे पढ़ते हैं, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता है। मित्रों, भीड़ की शिकायत यह थी कि उनके पास मन्ना को छोड़कर खाने को और कुछ भी नहीं है। तब हम गिनती 11 उसके 7 पद में आगे पढ़ते हैं, मन्ना तो धनी के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। मित्रों, यह तो ऐसा था कि मानो परमेश्वर कह रहे हैं कि ये लोग मेरे भोजन को तुच्छ जानते हैं, जिसका स्वाद भुने हुए मुर्गे और मिठाइयों और केक के जैसा है। मन्ना कोई निरस भोजन नहीं था, परंतु मिली जुली भीड़ इसे नहीं चाहती थी। तब हम गिनती 11 उसके 8 पद में आगे पढ़ते हैं, लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते व ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए का सा था। मित्रों, मन्ना को कई तरीकों से खाया जा सकता था, उसे कूट सकते थे, उसे भून सकते थे या उसका द्रव्य बना सकते थे। मन्ना के विभिन्न व्यंजनों की एक पूरी किताब मूसा की माता के 101 व्यंजनों के नाम से छापी जा सकती थी, परंतु इसराइलियों को मन्ना पसंद नहीं आया और उन्होंने परमेश्वर के दिए हुए भोजन को तुच्छ जाना और मिस्र के व्यंजनों को खाने की चाह की। वे वापस उसी स्थान में जाना चाहते थे जहां से वे निकलकर आए हैं। मित्रों, यही उन लोगों की कहानी है और मुझे उन लोगों से डर लगता है जिनके जीवन में परिवर्तन हुआ है और वे जो मिस्र की गुलामी से छुड़ाए गए हैं। वे हमेशा अपने राह से भटक जाते हैं और वही पुराने जीवन की ओर लौटना चाहते हैं। मित्रों, हमारे आसपास ऐसे कई मसीही हैं जिन्हें अपना पुराना जीवन छोड़ देना चाहिए। आप संसार की तरह अपना जीवन नहीं जी सकते हैं, जैसे कि संसार मिस्र के दासों की तरह जीता है, और आप चाहेंगे कि परमेश्वर की सेवा में बने रहें और परमेश्वर की शांति आपके हृदय में बनी रहे। मित्रों, आपको मिस्र के जीवन से पूर्ण रूप से नाता तोड़ना होगा और उस सच्चा मन्ना में जीवन बिताना होगा जो स्वर्ग से आता है, वह जो प्रभु यीशु मसीह है। हम निर्गमन 16 उसके 32 और 33 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी वह यह है कि इसमें से ओमेर भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिससे वे जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकालकर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था। तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उसमें ओमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे धर दे कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। मित्रों, एक घड़ा में मन्ना भरकर संदूक में रखा गया, जिसका विस्तृत वर्णन हमें निर्गमन की पुस्तक उसके अंतिम अध्याय में मिलता है। पवित्र संदूक में 3 चीजें रखी गई थी। पहला, हारून की छड़ी जिसमें कली निकली थी। दूसरा, मन्ना से भरा हुआ घड़ा। और तीसरा, 10 आज्ञा की तख्ती। मित्रों, व्यवस्था यह बताती है कि सिर्फ मसीह ने ही व्यवस्था का पूर्ण पालन किया। उसने मेरे लिए और आपके लिए व्यवस्था को पूरा किया। मन्ना हमारे लिए मसीह की मृत्यु को बताती है और मसीह हमारे लिए आत्मिक भोजन के रूप में उपलब्ध कराया गया। हारून की छड़ी जिसमें कली थी वह मसीह के पुनरुत्थान के विषय में बताती है। तब उसे संदूक के ऊपर रखा गया जो ढक्कन का काम करती है, जहां दया की सिंहासन थी और जिसमें बलि का लोह छिड़का जाता था। मित्रों, केवल मसीह ही परमेश्वर की मांग को पूरा कर सकता था, क्योंकि केवल वही हमें बचाने के योग्य है। उसने अपना लहू बहा दिया, इसलिए परमेश्वर अपनी दया मनुष्यों पर बढ़ा सकते हैं जो एक पापी है। और हम आगे देखते हैं निर्गमन 16 उसके 35 और 36 पद में, जहां पर लिखा हुआ है, इसराइली जब तक बसे हुए देश में न पहुंचे तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना को खाते रहे। वे जब तक कनान देश के सिवाने पर नहीं पहुंचे तब तक मन्ना को खाते रहे। एक ओमेर तो एपा का 10वां भाग था। मित्रों, ये 2 पद हमें बताते हैं कि इसराइली लोग 40 वर्षों तक मन्ना खाते रहे, और हमें यह भी बताया गया है कि उनकी प्रतिदिन का खर्चा कितना था, और अंततः जब वे प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे तो मन्ना मिलना बंद हो गया और वे फिर से जमीन की वही उपज अर्थात पुरानी मकई खाने लगे। वे उस पुराने उपज के लिए भी शिकायत करने लगे। उन्होंने पाया कि मन्ना ही एक उत्तम भोजन था और वास्तव में यह उस पुराने अनाज या उपज की तुलना में अधिक आकर्षक था। मित्रों, यह बहुत दिलचस्प बात है कि बहुत से लोग उधार पाने के बाद भी अपने अनुभवों के सहारे जीवन व्यतीत करते हैं। वे उस क्रूस के निकट गए जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बताती है, परंतु वे अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में ही बोलते रहते हैं। जब कभी भी वे गवाही देते हैं तो वे सिर्फ अपने अनुभवों को ही व्यक्त करते हैं। वे बाइबल अध्ययन करना पसंद नहीं करते क्योंकि उनके लिए यह एक पुराने बेस्वाद मकई की तरह है। यह परमेश्वर का वचन है जिसमें वह हमें तृप्त करना चाहते हैं। इसलिए यदि अब तक आपने मन्ना अर्थात परमेश्वर के वचन का स्वाद नहीं चखा है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मसीह के निकट आइए और उसे चख कर देखिए। भजन संहिता 34 उसके 8 में भजनकार कहता है, परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। मित्रों, इसी से संबंधित बातें प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 51 पद में कहते हैं, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वयं यीशु मसीह स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हैं। इसराइली निर्जन प्रदेश में मन्ना खा रहे थे, परंतु अब हमें जीवन देने वाला मन्ना दिया गया है। इसराइलियों की तरह मन्ना को ग्रहण करने से न कुड़कुड़ाएं जो प्रभु का वचन है, और अपने अनुभवों पर भरोसा न करें परंतु परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। मित्रों, हो सकता है कि आज तक आपने मसीह को चख कर या परख कर नहीं देखा है। आज ही आप उसे अपने जीवन में परख कर देखिए कि वह कितना भला है, वह कितने प्रिय और स्वादिष्ट है, वह आपके पापों से आपको छुटकारा देगा। मित्रों, यहाँ पर हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही लाभ मिला है। कृपया आप अपने आशीष पत्र व फोन के द्वारा हमें अवश्य बताएं ताकि हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद कर सकें। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
मसीह महिमा हो, महिमा ही महिमा, मसीह महिमा हो। सुबह को हो, दोपहर को हो, संध्या को सारी रात्रि को, मसीह महिमा हो। संध्या को सारी रात्रि को हो।